ओम शांति। परम पावन शिव बाबा के इस पावन धरा पर जब हम आते हैं तो अनायास ही दिल के तार उसके साथ जुड़ जाते हैं और फिर जिस आनंद के लिए सारी दुनिया तरसती वह आनंद हम बच्चों को मिलता है ऐसा हम अनुभव करते हैं। तो यहाँ कौन बैठे हैं? सब हम बाबा के, भगवान के, परमपिता परमात्मा के, पतित से पावन बनाने वाले के अनुभवी बच्चे बैठे हैं। तो आप अनुभव करते क्योंकि बाबा हम बच्चों को योगी बनाता है। योग इस पर कुछ एक विचार हम सुनेंगे। ऐसे दुनिया में बहुत सारे योग हैं और लोग योग करते हैं और सारे योगों का क्षेत्र शरीर है। शरीर से संबद्ध योग सिखाते हैं लोग और यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम भी योग करते हैं, ऐसा कहेंगे या हम योगी हैं ऐसा कहेंगे? क्या फर्क पड़ता है योग करते हैं और योगी है में? क्या फर्क पड़ता है योगी हैं और योग करते हैं? तो योग करते हैं तो दूसरा ये प्रश्न सामने खड़ा होता है कि कितने समय के लिए करते हैं और कब करते हैं, है ना? और जब योगी हैं तो पल प्रतिपल योग लगा रहता है उसको कहेंगे योगी हैं। अब ये योग क्या होता है हमारे हिसाब से? हाँ, बाबा ने जो हमको योग सिखाया, बाबा ने कहा योग नहीं लगता है, नहीं लगने दो, छोड़ दो योग करना। आप क्या करो? याद करो। योग के बजाय क्या करना है? याद करना है। तो याद तो हर एक व्यक्ति करता ही है ना, जीवन में हर घड़ी याद करता रहता है, चाहे वो मनुष्य को याद करे, माना व्यक्ति को याद करे, या वस्तु को याद करे, या वैभव को याद करे, पर याद जरूर करता है। ऐसे योग माना कहा गया है, योग जिसे वो लोग समझते हैं यूज टू कनेक्ट, योग यूज टू कनेक्ट, जहां जोड़ होता है, कनेक्शन होता है। परंतु आश्चर्य का विषय कई बार मुझे लगता है कि लोग जो बोलते हैं वे कनेक्शन होना चाहिए तो कनेक्शन होता दो का, वो दो का एक ज्ञान, एक एहसास, एक समझ कल तक हमको नहीं थी कि किसका किसके साथ जोड़ होने वाला है। और जोड़ होता भी है ना तो वो सम, दोनों का समभाव होगा, समत्व होगा, समगुण होंगे तो योग होगा, माना जोड़ होगा, है ना? ऐसे ही हम ईश्वर को कहते पतित पावन सरगुणों के सागर, ऐसा ऐसा बहुत महिमा करेंगे। और अपने आप को कहेंगे कि मैं नीच खल कामी, तो ये जोड़ तो नहीं हो सकता है ना। एक है परम पावन और दूसरा है नीच खल कामी, तो इन दोनों की जोड़ तो नहीं मिलेगी, रास नहीं जमता है, तो कैसे योग कहेंगे। अब जब यहां आते हैं तो जोड़ का अर्थ बाबा कहता है बच्चे मैं ज्ञान का सागर और तुम बच्चे ज्ञान स्वरूपी, तो ये जोड़ हो सकता है, सागर है और ये स्वरूपी है, तो दोनों में जोड़ मिलन हो सकता है, जोड़ कनेक्शन हो सकता है। तो ऐसे ही बाबा हर बात में बच्चों को अपने समकक्ष रखा, समान रखा, ऐसे नहीं कि मैं ऊपर हूं और बच्चे आप नीचे हो ना। हमने तो ये प्रार्थना की थी कि हम तेरे पांव की धूली हैं, परंतु भगवान ने कहा कि नहीं, तुम मेरे पांव की धूली नहीं हो, बल्कि तुम मेरे सिरताज हो। मैं बच्चों को कांध पे उठा लेता हूं, बाप बच्चों को अपने से भी ऊंचा देखता है और देखना चाहता है। आप लौकिक में भी जो बाप हैं सोचते हैं हम तो नहीं पढ़ सके, पर हमारा बच्चा पढ़ लेगा तो कितना अच्छा होगा। समझिए कोई दिल्ली के दूध, दिल्ली में चाय बनाता है ठेले पर, उसका लड़का IAS पास हो जाए, और दिल्ली में कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, उसकी लड़की सारे भारत में फर्स्ट नंबर में अकाउंटेंसी पास हो जाए, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाए, तो उससे कितनी खुशी होगी कि मैं ठेले वाला रह गया, मैं ऑटो वाला रह गया, परंतु मेरा बच्चा बच्ची हाई पोस्ट पे, तो उसका नाम वाला हो गया ना। ऐसे ही आप देखेंगे कि वसुदेव जो कृष्ण का बाप है, तो वसुदेव को कोई नमस्कार नहीं करता है, पर वासुदेव को करता है, क्योंकि वसुदेव मनुष्य है और वासुदेव देव है, इतना फर्क पड़ जाता है। तो वो जो जोड़ बाबा हम बच्चों को सिखाता है वो अद्भुत है। तो यहां पर योग यूज टू कनेक्ट। अब फिर गीता में एक शब्द आता है कि योग समत्वम उच्यते, योग जो है ना वो समत्व को कहा जाता है, बराबरी को कहा जाता है। तो बाबा भी आप देखेंगे, हम जब पढ़ते थे विशेष करके संस्कृत जब पढ़ते थे तो वो गुरु ऊपर में बैठता था, फिर हम शिष्य नीचे, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे देखना भी कभी कभी मना होता था उन दिनों में, कि गुरु को देखने की उतनी ताकत उस शिष्य में नहीं, वो हांजी हांजी करते बैठ जाए। और यहां हम देखते हैं कि हम बाबा उन दिनों में साकार में बाप बच्चों को बाजू बिठाता था, गोदी में बिठाता था, तो ये भी कमाल की बात हो गई ना। तो ऐसे बच्चों को भी बाबा ने समान देखा। अब उनके बाद जो दादियां आई वो भी, तो बाहर वालों को वही आश्चर्य लगता है, ये दादियां भी इन भाई बहनों को अपने समान समझती हैं, ये नहीं समझती कि हम इतने साल के पुराने योगी हैं और ये तो यहां आने वाले हैं, इनका नहीं बाजू बिठाते, समत्व भाव देखते हैं। तो ऐसे, और फिर ये भी है कि हमको ये नॉलेज मिली है अब, ये जो पांच तत्वों का शरीर है और इस पांच तत्व जिसको लोग कहते हैं ये मिट्टी का पुतला है, और इस मिट्टी के पुतले के भीतर एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, या बाबा के शब्दों में बाबा कहता है ये चैतन्य डिब्बी है, इस चैतन्य डिब्बी में एक रतन अंदर बैठा है, तो वो आत्मा है। और आत्मा समझिए पवित्र बने और शरीर अपवित्र हो, ये भी नहीं हो सकता है, मेल नहीं खाता है। इसीलिए फिर यहां हम देखते हैं कि संकल्पों को जितना हम पावन बनाते हैं, संकल्पों की शुद्धि पर जितना बल देते हैं, उतना ही बल शरीर की शुद्धि पर भी देते हैं। सारे विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जो सवेर सवेर इतना अच्छा स्नान पानी की व्यवस्था कहीं होती होगी। ऐसा कई मेले मला खड़े लगते हैं, वहां कोई स्नान की व्यवस्था होती नहीं है और ही दुर्गंध होती है, पर ये बाबा के घर ऐसे बने हुए हैं कि यहाँ हजारों स्नान घर है। क्यों ऐसे किया बाबा ने? क्योंकि शरीर की शुद्धि को उतना ही बल दिया और खानपान भोजन की व्यवस्था में भी ये देखा गया कि जितना शुद्ध अन्न ग्रहण करेंगे उतना ही मन भी शुद्ध होगा, अर्थात संकल्पों में भी शुद्धि आएगी। तो अन्न ऐसे कहा गया कि अन्नेन मनसो जातः, ये जो मन है, ये जो संकल्प है, ये फिर अन्न के प्रभाव से चलते हैं। अन्न मन पर, अन्न संकल्पों पर प्रभाव डालता है। जैसा अन्न हम खाते हैं, जैसे बोला गया हिंदी में, जैसी जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो ऐसा शुद्ध अन्न लेने के लिए भी यहाँ पर पहले पहल शिक्षण मिलता है कि हम ये चीज खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए। क्यों ऐसे? क्योंकि ये आत्मा और शरीर की पवित्रता को समसम बराबरी का दर्जा देने के लिए हम खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, कुछ भी फिर योग लगाएंगे, माना मन को शुद्ध बनाएंगे, ये होने वाली बात है नहीं। इसीलिए यहाँ पर भोजन के प्रति भी उतनी ही जागरूकता अपनाने के लिए यह यज्ञ हम सबको प्रशिक्षण देता है। जैसे ही बाहर के लोग कहते हैं ये क्या ब्रह्मा कुमारियां ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ ऐसा बोलते हैं, वो कहते हैं ये छुड़ाते हैं वो छुड़ाते हैं, परंतु हम जितनी वैरायटी का भोजन करते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें शायद ही कोई दूसरा करता होगा। ऐसा भोज जैसे गायन है ना कि ठाकुर जी को 56 प्रकार का या 36 प्रकार का भोग लगता है, तो बाबा भी कहता था ये बच्चे कौन है? ये बच्चे ठाकुर बच्चे हैं। आप समझते हैं ठाकुर किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को बोलते हैं ठाकुर। तो ये बच्चे छोटे 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 श्री कृष्ण हैं बाबा के सामने। तो बाबा ने भोजन की व्यवस्था में भी शुद्धि अपनाने के ऊपर उतना ही बल दिया। तो शरीर की शुद्धि, भोजन की शुद्धि होगी और साथ ही साथ जैसे खान पान, पान माना पहरवाइश, हम जैसा चाहे वैसा पहने नहीं, वो पहरवाइश में भी, ड्रेस में भी फिर बाबा ने परिवर्तन लाया। भले करके कोई सफेद कपड़ा नहीं पसंद करता है तो बाबा कहे कि थोड़ा लाइट तो पहनो, एकदम डार्क काला काला नीला नीला लाल लाल, या सामने वो शेर पीछे चीता, सामने बिल्ला पीछे कुत्ता, ऐसा ड्रेस भी नहीं पहनने का ताकि दूसरे के वृत्ति में कोई परिवर्तन आए। ऐसा ड्रेस में भी सात्विकता लानी चाहिए। जैसे आप देखेंगे जहां कहीं भी ऋषि मुनियों के चित्र होते हैं तो वो तो शर्ट ही नहीं पहनते, नहीं भगवान ने तो फुल शर्ट फुल ड्रेस डालने की कला सिखाई ताकि मर्यादा बनी रहे। सफेद नहीं तो कम से कम लाइट नहीं, व्हाइट नहीं तो लाइट ही सही, ऐसा एक प्रकार का ड्रेस भी बाबा ने हम बच्चों के सम्मुख रखा। तो यह जो पवित्रता है पहरवाइश की, पीने की, खाने की, तो यह भी, और शरीर की व्यवस्था के लिए, तो यह भी आत्मा को पावन बनाने के साथ साथ आज भी आप देखेंगे बाबा न केवल आत्माओं को पवित्र बनाता है। सवेरे मुरली में बाबा ने कहा कि न केवल बाबा आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए आया परंतु 5 तत्वों को भी पवित्र बनाने के लिए आया। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों से ही शरीर बनता है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये जो समत्वम योग उच्यते, समत्व को योग कहा जाता है, या योग से समत्व आता है प्रकृति में और व्यक्ति में। व्यक्ति और प्रकृति साथ साथ चले। अब व्यक्ति में विकार आया तो प्रकृति में भी विकार आया। आप नोट करेंगे कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति व्यक्ति की प्रतिबिंब है। जैसा व्यक्ति होता है वैसी प्रकृति होती है। व्यक्ति के साथ साथ प्रकृति चलती है और इसीलिए बाबा कहता है कि प्रकृति रचना है और व्यक्ति उसका रचयिता है। तो बच्चे तुम रचयिता हो और यह शरीर रचना है, और शरीर में शरीर रचना है तो शरीर भी रचा कैसे जाता है? ये शरीर जो बना हुआ है ना हमारा, मैं एक बात बता दूं, हो सकता है थोड़ी देर में कोई वो स्वामी जी आने वाले हैं, एक बात बता दूं कि ये जो स्वामी लोग होते हैं ना, आपने देखा है महंत स्वामी महंत इत्यादि, विशेष करके आचार्य गण जो होते हैं, ये सारे के सारे गोलमटोल मस्त मस्त होते हैं, मस्त मस्त जिसको हमारी भाषा में बोला जाता है। उसका कारण भी एक है, वह यह है कि हम 5000 साल पुराने हैं जबकि वह प्रवृत्ति 1500 साल पुरानी है, और 5000 साल के पहले 2500 साल तो हम पवित्र बिताए, बाकी 2500 साल हमारे अंदर जो अपवित्रता आई, विकार आए, विकारों के कारण से हमारे शरीर में भी खराबी आई, और हम जैसे कहते हैं नीच खल कामी, तो बिल्कुल ही बाबा कहता है बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तुम बनते हो तो भ्रष्ट से भ्रष्ट भी तुम ही बनते हो, तो उस कारण से भी हमारे शरीर थोड़ा सा आड़े टेढ़े होते हैं, ये भी कारण है। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि व्यक्ति जो मैं हूं आत्मा, मेरे अनुसार यह शरीर ढलता है। यदि आप बायोलॉजी जीव शास्त्र में देखेंगे, जब मातृगर्भ में पहले पिंड होता है, बाद में जब उसमें आत्मा आ जाती है तब वो शरीर आकार लेता है उस आत्मा के संस्कार के अनुसार। जैसे आत्मा आकर के प्रवेश करती है तो बाबा कहता है चुरपुर करता है, तो चुरपुर के साथ साथ शरीर की रचना ढलती है, गोरा काला जैसा कैसा भी लंगड़ा लूला जो बनता है शरीर, वह आत्मा के कर्मों के अनुसार बनता है। इसीलिए बाबा अब हम बच्चों को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरणा देता है, ताकि अगला शरीर भविष्य का हमारा सुंदर, जिसको कहते सर्वांग सुंदर हो, वो सर्वांग सुंदर शरीर अब के पुरुषार्थ के आधार पर बनता है ना। इसीलिए समत्वम योग, ये समत्व भाव लाना है तो विचारों की पवित्रता के साथ साथ प्राकृतिक पवित्रता को भी लाएंगे। अब शरीर एक घर है, घर का मैं मालिक हूं, अब मालिक जैसा होता है ना वैसा घर बनता है, घर के जैसा मालिक नहीं बनता है। अब हम जैसे समझिए, मैंने किराए पर मकान लिया तो पहले वाले को नीला रंग पसंद था, मैंने उसको निकाला, मुझे नीला पसंद नहीं है, सफेद पसंद है, पीला पसंद है, लाल पसंद है, तो मैं वो रंग दूंगा ना। मालिक कोई घर में रहने वाला आलसी है, झाड़ू नहीं लगाएगा, साफ नहीं रखेगा, कचरा वहीं का वहीं रखेगा, तो मालिक के जैसा घर होता है। ऐसे ही शरीर भी एक घर है, इस घर की ये जो खिड़कियां है ना दो, तो ये घर है, अब घर के अंदर जो मालिक है वैसा ये घर बाहर रहेगा, साफ रहे या गंदा रहे। कल तक गंदा रहता था क्योंकि अंदर का मालिक ऐसा था, अब साफ सुथरा रहता है क्योंकि अंदर के मालिक के व्यक्तित्व में परिवर्तन आया, ये समझने की बात है। तो वो मैं मालिक हूं, अब मेरे अनुसार ये शरीर, इसीलिए बाबा कहता है कि बाप तुम बच्चों को शरीर चलाने की कला सिखाता है, शरीर को चलाना भी आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये कब कब हाथ दे देगा मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे होता है ना, कार किसकी होती है, चले तो राजा नहीं तो रंक, है ना, नहीं चले तो उसमें शौक से बैठ के चलते हैं, नहीं तो धक्का मारना पड़ता है उसी मालिक को। ऐसे ही अब हम, अच्छा है शरीर तो बड़े मौज में चल रहे हैं, नहीं तो फिर शरीर को हमको लेके चलना पड़ता है। आप बुरा मत मानेंगे, मैं कहूंगी जैसे किसी को लकवा मार देता है, पैरालाइज होता है ना, तो बेचारे को शरीर खींच खींच के लेके चलना पड़ता है ना। अब मैं शरीर में आत्मा हूं तो मुझे कोई भी एक व्यक्ति उठा लेगा, मैं शरीर छोड़ दूं तो इसको ले चलने के लिए 4 लोग चाहिए, भारी हो जाता है ना। तो आत्मा का अस्तित्व जितना इसमें रहता है तो ये शरीर हल्का रहता है, आत्मा अपने अस्तित्व को भूल जाती है तो शरीर भारी लगता है, उठना बैठना उसके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए ये समभाव हो तो आत्मा के जो विचार हैं मेरे जो विचार हैं मैं उनमें शुद्धि लाने के लिए यहाँ प्रयत्न कर रहा हूँ संगम युग पर। योग का तात्पर्य यही है कि मैं अपने विचारों में पावित्र्यता लाऊं। पावित्र्यता का तात्पर्य न केवल ब्रह्मचर्य है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के अवगुणों को चिंतन में लाना, देखना, सुनना और सुनने के बाद उसका इफेक्ट अनुभव करना भी अपवित्रता है। क्यों? क्योंकि मैं शांत हूं तब जबकि पवित्र हूं, मैं शांत हूं जबकि सामने वाले व्यक्ति के अवगुण मुझे न सताते हों। कोई ऐसा व्यक्ति आज तक हमने नहीं देखा जो अपने ही अवगुण के कारण चिंतित होगा। मानेंगे मेरी बात को आप? मेरे को गुस्सा आता है, मुझे बुरा नहीं लगता है। आप गुस्सा करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए दूसरे का गुस्सा क्रोध मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, तो माना उसके अवगुण मुझे अच्छे नहीं लगते। और इसीलिए कहा गया कि हे प्रभु अवगुण चित्त न धारियो, मैं अवगुणों की मूर्ति हूं। इसीलिए मेरे अंदर जो अवगुण है वो अपने चित्त में मत रखिए और आपको जो दया कृपा मेरे ऊपर करनी है वो भरपूर कीजिए। ऐसा हमने भक्ति में प्रार्थना किया। पर अब भगवान बोलता है कि जब तक तू अवगुणों को नहीं निकालेगा तब तक मेरी कृपा का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गुणों का सागर और तुम गुणमूर्त बनो तब तुम्हारी मेरी दोस्ती हो सकती है। मैं तुमको सब कुछ लुटा सकता हूं, जिसको बाबा कहता है मैं सारा वखर लुटा करके ही यहां से वापस जाऊंगा। जब तक खाली नहीं होऊंगा ज्ञान से तब तक मैं शांति धाम वापस जाने वाला हूं नहीं। और अभी भी बाबा के पास बहुत सारा ज्ञान का खजाना बाकी है, अभी देगा। इसीलिए ये योग माना उसके साथ जो हमारा समभाव है उसको जितना हो सकता है बराबरी का दर्जा बनाए रखेंगे और आत्मा के शरीर के पवित्रता के लिए जो मेहनत करनी है वो हमको करनी है, चाहे खाने में, चाहे पीने में, चाहे पहरवाइश में, चाहे शरीर को स्वच्छ रखने में। जो नियम हमारे बने हुए हैं उनको कभी भी दाव पर न लगाएं तो हमारा भाग्य बन सकता है और हम योग करने वालों के बजाय योगी जीवन में जी सकते हैं। तीसरी बात ये कही गई है कि योग है ना, यह फिर जहां हम रहते हैं इस भारत देश में, यहां आप देखेंगे अभी कुंभ मेला चल रहा है त्रिवेणी संगम पर, हजार नहीं लाखों नहीं वो कहते हैं करीब करीब 3 करोड़ लोग आकर के गंगा में स्नान करेंगे। और 3 करोड़ लोग समझो, 3 करोड़ या कुछ भी करोड़, इतने लोग तो शुद्ध हो गए होते है ना, परंतु ऐसा होता नहीं है। बाबा भी कहते हैं बच्चे गए नहाए आए फिर एज इट इज जैसे के तैसे हो जाते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। परंतु यहां जब इस गंगा घाट पर हम आते हैं तो हमारे विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जो यहां हम सुनते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि सुनी हुई बात को हम आत्मसात करें, डाइजेस्ट करें, जितना अपने अंदर में हो सकता है उसको जाने से आत्मा की गहराई तक, मन की नहीं आत्मा की गहराई तक उसको ले जाए ताकि वो मेरी प्रॉपर्टी बने। और फिर योग का तात्पर्य यह भी नहीं है कि हम गृहस्थ जीवन से हट करके और कुछ करें, नहीं। बाबा कल भी मुरली में कह रहा था कि हम कमल पुष्प, बच्चे ये कमल पुष्प होता है ना, दिखता तो ऊपर एक है, आप कभी जहां कमल होते हैं वहां जाकर के देखेंगे ना तो कमल पुष्प एक ऊपर दिखाई देता है जो सुंदर है, पर उसका जो परिवार है जल के बीच जो रहता है वो बहुत बड़ा है, चाहे वो कमल ककड़ी है या कमल पुष्प है या कमल बीज है, कमल दंड, ये सारा नीचे में फैलाव होता है। उस फैलाव के बावजूद भी वह अपने को न्यारा और प्यारा रखता है। हालांकि कमल में कोई सौंदर्य नहीं है, आप देखेंगे कमल में कोई सुगंध नहीं है, परंतु उसका न्यारापन हमको प्यारा बना देता है। तो ऐसा ऐसा एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए हमको सिखाता है। पहले जो लोग थे वो कहते थे कि भाई चित्त वृत्ति निरोध को ही योग कहते हैं, नहीं हम नहीं ऐसा मानते हैं कि चित्त वृत्ति की कोई विरोध करना माना और ही उसके साथ बला मोल लेना होता है। जैसे हम देखते हैं कि भाई काम का विरोध किया, क्रोध का विरोध किया, लोभ का, मोह का, अहंकार का किया, नतीजा क्या हुआ, और ही उसमें डूबते गए और ही डूबते गए। आज जो हमारे सामने दुनिया दिखाई दे रही है ये बिल्कुल कामी क्रोधियों की दुनिया दिखाई देती है। इसका तात्पर्य ये हुआ रहा कि और ही हम अंदर धंसते गए और हम ऊपर उठ नहीं पाए। इसीलिए बाबा ने ये कहा कि जैसे हमारे संकल्प होंगे श्रेष्ठ उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा, और हम जितना ऊंचा उठना चाहते हैं वो हम नहीं जानते हैं, पर भगवान बाप ने हमको अपने से भी ऊंचा उठने के लिए प्रेरणा देने के लिए यहाँ सम्मुख में बुलाया है। आप आए हैं, आपका इस यज्ञ की ओर से बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन। ओम शांति।
हमारे शांतिवन में श्री श्री डॉक्टर यतीश्वर महास्वामी जी कुप्पूर संस्थान चिकनाईनली तालुक तुमकुर जिला से हमारे शांतिवन में पधारे हैं। उनको हम सभी की ओर से स्वागत करते हैं, सभी करतार से स्वागत करना है। स्वामी जी बहुत समय से हमारे आश्रम में आते जाते रहते हैं, इसलिए इस अवसर एक बार मधुबन में आने का बहुत आशा रखते थे। पहले समय भी आते हैं ऐसे कहते थे, इस समय उनको बहुत समय मिला है बाबा को मिलन करने के लिए। स्वामी जी पधारे ही, उनको स्वागत है, स्वागत है। फंक्शन
हम भारतीय हैं, हमारे पास भाषा वैविध्यता है, तो मैंने स्वामी जी से कहा दो शब्द आप हिंदी में बोले, परंतु वो कन्नड़ में बोलेंगे और मैं उसको आपके समक्ष हिंदी में रखूंगा।
त्रैलोक्य संपदा लेख्य समलेखन वित्तहे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। आराध्य गुरुवर्ण स्मृत ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ,
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಚಹು ಓರ್ಸೆ ಆಯ್ ಹುವೆ ಭಗವದ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಭಾಯಿ ಬೆಹನು,
ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ತಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಂತಹ ರಾಜಋಷಿ ಬಸವರಾಜಣ್ಣನವರೇ, ಸುವರ್ಣಕ್ಕನವರೇ, ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ತಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ನೇಹಕ್ಕವರೇ,
जिन्होंने मुझे इस पावन स्थान पर ले आया, हमारे हुबली के आदरणीय भ्राता राजश्री ब्रह्मा कुमार बसवराज भाई और स्नेहा बहन,
ये वंदो पवित्र ताणदल्ली ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗಾದ ಅನುಭವ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಯಹಾಂ ಜಬ್ ಮೇ ಆಯಾ ಔರ್ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಯಹಾಂ ಜೋ ಆಪ್ಕಾ ಧ್ಯಾನ ಕಕ್ಷ ಹೇ ಜಬ್ ಮೈ ವಹಾಂ ಗಯಾ ತೊ ವಹಾಂ ಕಾ ಅನುಭವ ಅವರ್ಣನೀಯ ಹೇ ಔರ್ ಮುಜೆ ಬಡಾ ಅಚ್ಛಾ ಲಗಾ.
ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗೂ ಜೀವಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಕರಣೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು.
ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇ ಔರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೆ ಶುಭಾಶೀಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಿ ಕೃಪಾ ಹಮ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೇ ಲೇನೆ ಹಿ ಚಾಹಿಯೇ.
ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ತಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಹೊರತು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಜೆ ಏಸೆ ಅನುಭವ ಹೋ ರಹಾ ಹೇ ಕಿ ಯದಿ ವಹ ಪರಮ ಕೃಪಾಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲೇನೆ ಹೇ ಉಸ್ಕಿ ಕೃಪಾ ಲೇನಿ ಹೇ ತೊ ಆಪ್ಕೋ ಇಸಿ ಸ್ಥಾನ ಪರ್ ಆನಾ ಹೋಗಾ ಇಸ್ ಸ್ಥಾನ ಕೆ ಸಿವಾಯ ಔರ್ ಕಹೀ ಭೀ ಈಶ್ವರ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ನಹೀ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಐಸಾ ಮೇರಾ ಮಂತವ್ಯ ಹೇ.
ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇಕಾದರೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಭಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಓ ಜೀವಾತ್ಮ ಜೊ ಈ ಶರೀರ ಮೇ ಹೇ ಯದಿ ಉಸ್ಕೊ ಪಾವನ್ ಬನ್ನ ಹೇ ತೊ ವಹ ಯಹಾಂ ಇಸ್ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೇ ಉಸ್ಕೆ ಸಮೀಪ ರಹನೆ ಕಾ ಜೊ ಯಹ ಸ್ಥಾನ ಹೇ ಐಸೆ ಸ್ಥಾನ ಪರ್ ಮೇ ಆಯಾ ಮೇ ಅಪನೆ ಆಪ್ಕೋ ಬಡಾ ಹಿ ಧನ್ಯ ಮಾನ್ತಾ ಹೂ ಕಿ ಮೇ ಯಹಾಂ ಆಯಾ ಔರ್ ಬಾಬಾ ನೇ ಮುಜೆ ಯಹಾಂ ಬುಲಾಯಾ.